जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जसोदा नंदन व्रज जन रंजन जसोदानंदन व्रज जन रंजन, जसोदानंदन व्रज जन रंजन, जमुना तेरा वनचारी, जमुना तेरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे, जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम, जय गौर निताय गौर निताय गौर निताय, जय गौर निताय, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, नितय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, श्री श्री राधा श्याम सुंदर जीव की, श्री श्री कृष्ण बलराम जीव की, श्री श्री गौर निताय जीव की, श्रील प्रभुपाद की, समवेत भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स पदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरौ श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सुजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादन सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमोऽयं विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभयैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते रुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति निष्ठुकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं श्रीचैतन्यईश्वरम्। आज बहुत विशेष दिन है। आज माता जाह्नवी की आविर्भाव तिथि है और मधु पंडित गोस्वामी की तिरुभाव तिथि है और भगवान श्री राम की अर्धांगिनी माँ सीता की आविर्भाव दिवस है। तो संक्षेप समय में, कम समय में जस्ट कुछ अंशों का हम लोग श्रवण करेंगे। तो नित्यानंद स्वरूपिणी माँ जाह्नवा की आज वैशाखी शुक्लाष्टमी तिथि में आविर्भाव दिवस, नवमी, शुक्ला नवमी, नवमी तिथि में जाह्नवा माता की आविर्भाव। तो आज विशेष दिन है, आज गोपीनाथ जी मंदिर में माता जाह्नवी की अभिषेक भी होगा। तो जाह्नवा माता सूरजदास सरखेल शालिग्राम में बास करते थे। तो इनका पांच भाई था, पांच भाई है, कृष्णदास, नृसिंह चैतन्य, गौरीदास और दामोदर और जगन्नाथ। दामोदर, जगन्नाथ, गौरीदास, कृष्णदास और नृसिंह चैतन्य। तो इनका नाम था सूरजदास सरखेल। सरखेल उपाधि उसी को दिया जाता था जो हिसाब निकास, बादशाह के हिसाब निकास रखते थे, उसका सरखेल उपाधि दिया जाता था। तो बसु सूरजदास सरखेल के दुई कन्या, एक वसुधा और एक जाह्नवा। वसुधा बड़ी थी और जाह्नवा छोटी थी। तो सूरजदास सरखेल गौरगणदस दीपिका में लिखा है कि रेवती बारुणी रेवतांश संभवे, बारुणी और रेवती अंश संभवे तस्य प्रिय श्री वसुधा जाह्नवा। कृष्ण लीला में बारुणी और रेवती नाम से उसी के अंश रूप में वसुधा और जाह्नवा रूप में प्रकट हुए। पहले कौन थे दोनों? बारुणी और रेवती। और इनका जो सूरजदास सरखेल ये थे ककुदमी राजा, ककुदमी राजा के अंश थे सूरजदास सरखेल, जो सूर्य के समान दीप्यमान थे। तो एक बार उन्होंने नित्यानंद प्रभुर तो सूर्यदास पंडित मन सोच रहे कि दोनों बेटी की शादी कराना है, विवाह करना है। तो अभी विवाह किससे कराए? तो एक दिन ऐसे चिंतन करते करते सो गए। आज सपना में देखा कि हमारे दो बेटी, जो नित्यानंद जो है ये बलराम के स्वरूप है और बलराम के शरीर से 10 दिशाओं में तेज फैल रहा है, बहुत चमक रहा है, और उनकी दो साइड में बारुणी और जो रेवती उस शोभा पा रही है, दोनों विराजमान है। तो उन्होंने मन ही मन सोचा कि मैं अपना दो कन्या को नित्यानंद के हाथ में समर्पण करेंगे। नित्यानंद आए थे किंतु उस समय सूरजदास सरखेल विवाह देने का इनकार कर दिया था पहले, किंतु गौरीदास कहा कि नहीं, ये नित्यानंद जो है ये साक्षात बलराम है। फिर भी मानो उनका बाद में श्लोकों में बताएंगे कि बाद में कहे कि नहीं, अपना जो कन्या है, दोनों कन्या को नित्यानंद के हाथ में ही समर्पण करेंगे। तो इसमें पयार में लिखे हैं, सूरजदास पंडित चिंतिया मने मने करिते शयन निद्रा होइल सेइ क्षणे। बेटी जिस जैसे जवानी अवस्था प्राप्त करे उसी समय माता पिता की सोचनी चाहिए, सोच होना चाहिए कि मेरी बेटी की शादी करानी है। बहुत अधिक वयस तक इंतजार नहीं करना चाहिए, छोटी अवस्था में विवाह कर देना चाहिए, ये पिता माता का चिंता होना चाहिए। सूरजदास पंडित चिंतिया मने मने कोरिते शयन निद्रा होइल सेइ क्षणे। स्वप्न छले देखे महामनेरया नंदे दुई कन्या संप्रदान करे नित्यानंदे। जब सपन में देखा तो उन्होंने इस सपन की बात एक ब्राह्मण को कहा कि मैंने ऐसे सपन देखा, तो इस सपन का संवाद को भेजना है। उस समय श्रीवास पंडित घर में नित्यानंद प्रभु विराजमान थे, नवद्वीप में श्रीवास पंडित के घर में नित्यानंद प्रभु थे। तो ब्राह्मण जाकर श्रीवास पंडित से कहे कि सूरजदास सर्खेल का जो निवेदन है वो अपनी दो कन्या को नित्यानंद के हाथ में समर्पण करना चाहते हैं। तो श्रीवास प्रभु सुनकर बहुत खुश हुए और समय के अनुसार उन्होंने नित्यानंद प्रभु को इस समाचार दिए। नित्यानंद प्रभु बहुत आनंदित हुए और कहे कि आश्वस्त के ब्राह्मण को कि अति शीघ्र दो कन्या को उन्होंने स्वीकार करेंगे। जब इस संवाद ब्राह्मण को मिला, इस ब्राह्मण संवाद को लेकर शालिग्राम जहाँ सरखेल सूरजदास सरखेल का घर था वहां आए और सूरजदास सरखेल को इस संवाद को सुनाया कि आपने दो कन्या को नित्यानंद ग्रहण करेंगे। सूरजदास सरखेल बहुत प्रसन्न हुए कि आज हमारे दो कन्या की शादी माने नित्यानंद प्रभु के हाथ में होगा, समर्पण होगा। तो नित्यानंद प्रभु कुछ दिन के बाद उनका एक भक्त था कृष्णदास, हरिहोड़ ग्राम निवासी जो कृष्णदास नित्यानंद प्रभु के भक्त थे। तो नित्यानंद प्रभु की जो विवाह में जो खर्चा है उन्होंने देने के लिए स्वीकार किया कि मैंने जो भी खर्चा है अपने घर में पूरी खर्चा व्यवस्था करेंगे। तो कुछ दिन के बाद नित्यानंद प्रभु आए बड़गाछी ग्राम निवासी राजा हरिहोड़े पुत्र श्री कृष्णदास, याद रखे, इसके घर में नित्यानंद प्रभु की शादी की व्यवस्था हुई। फिर नित्यानंद प्रभु बड़गाछी ग्राम से शालिग्राम जहाँ सरखेल सूरजदास सरखेल का घर है वहां तक गए। जाने के बाद फिर साथ में श्रीवास अद्वैत आचार्य चंद्रशेखर मुरारी गुप्त ये सब साथ में है। नित्यानंद प्रभु साथ में कौन कौन है? श्रीवास अद्वैत आचार्य चंद्रशेखर मुरारी गुप्त ये साथ में ये सब गौर भक्त संकीर्तन करते हुए गए सूरजदास पंडित के घर में। और सूरजदास पंडित सूरजदास पंडित नित्यानंद प्रभु को लेने के लिए बहुत दूर रास्ता तक गए और उनके अभिनंदन किए और नित्यानंद प्रभु पाद पद में दंडवत प्रणाम निवेदन करे। सूरजदास सरखेल नित्यानंद प्रभु चरण में प्रणाम निवेदन किए। उसमें एक भक्ति रत्नाकर में एक पद है, लोटाइया पड़े नित्यानंद पद तले सूरजदास भासे दुई नयने रजले। नित्यानंद चरण में सूरजदास लेट गए और आंखों में आंसू से भर गए, दुई हाथे धरी चरण दुखाने कहिते चाहे किछु ना स्फुराए वाणी। चरण का स्पर्श करके कुछ कहना चाह रहे थे किंतु बोल नहीं पा रहे थे। मंद मंद हसी नित्यानंद प्रेमावेश कृपा करी कोई आलिंगन सूर्योदासे। नित्यानंद प्रभु सूर्यदास सरखेल को आलिंगन किए। सूर्यदास आनंदे विहल निरंतर के बुझते पारे सूर्योदासे रजंतर। सूर्यदास आनंद में विहल है और सूर्यदास अंतर में शुद्ध आनंद की लहर चल रहा है कि आज हमारा जीवन सार्थक है कि मैं दो कन्या को नित्यानंद के हाथ में समर्पण करेंगे। देखिए भ्रातर प्रेम चेष्टा गौरीदास ना धरे धर ज्योति अंतरे उल्लास। सूर्यदास सर्कल का भाई का नाम गौरीदास। गौरीदास देखते हैं कि नित्यानंद प्रभु कितना प्रेम कर रहे हैं सूर्यदास अपने भ्राता सूर्यदास सर्कल से। गौरीदास पंडित जब आप लोग जाएंगे कालना, वहां बहुत सुंदर विग्रह है गौर निताय। एक कहानी बड़ा मधुर है, कभी जाना चाहिए। वहां हमें से पर्दा लगता है गौर निताय के सामने, माने एक मिनट दो मिनट के बाद बाद पर्दा दिया जाता है, कोई अधिक क्षण गौर नित्यानंद को दर्शन नहीं कर सकते। वहां कुछ घटना है कि गौर नित्यानंद किसी के प्रेम से चले भी जा सकते, इसीलिए पर्दा दिया जाता है। तो वही गौरीदास नित्यानंद प्रभु सूर्यदास सर्कल के प्रति इतना प्रेम देखकर उन्होंने हृदय में बहुत आनंदित हुए। तो सूर्यदास पंडित नित्यानंद प्रभु पाद जुगल में अर्चन किए, पूजन किए और वसुधा जानवा को उनके हाथ में समर्पण कर दिए। लोक शास्त्र मते सूर्यदास भाग्यवान नित्यानंद चंद्र दुई कन्या कोई लदान। दुई कन्या को नित्यानंद के चरणों में निवेदन कर दिए। तो ये जो विवाह हो जाने के बाद कुछ दिन शालिग्राम में रहे। शालिग्राम के रहने के बाद उन्होंने कृष्णदास अवस्थान करके पत्नी बड़गाछी ग्राम में कृष्णदास के घर में आए। सबसे पहले कुछ दिन कहाँ रहे? शालिग्राम, जहां सर्कल सूर्यदास सर्कल के घर है। वहां से आए कृष्णदास, जहां उन्होंने जो उन्होंने विवाह की व्यवस्था किए थे कृष्णदास। फिर वहां से नवद्वीप आए, माता सची का दर्शन किए, प्रणाम किए। प्रणाम करने के बाद माता सची ने बहुत आशीर्वाद दिए। वसुधा जानवा देवी को देखकर माँ सची बहुत हर्षित हुए और उसमें भक्ति रत्नाकर में लिखते हैं, श्री वसु जानवा दोहे देखी एथा आए कोरी लजते स्नेह कोही साधनाए। माँ सची ने दोनों को बहुत स्नेह दिए, बहुत बहुत उनका मतलब आशीर्वाद दिए और कहने लगे कि कहे करिल जतेक स्नेह कोही साधनाए, बहुत अधिक प्रेम दिए। फिर वैष्णव जो इतना गृहिणी थे, वैष्णव भक्त माताएं थी, सभी ने आशीर्वाद दिए, बहुत उनसे स्नेह किए वसुधा जानवा से। तो वसुधा जानवा फिर सीता ठाकुरानी अद्वितीय के घर में आए। सीता ठाकुरानी बहुत आदर दिए, बहुत स्नेह किए। कुछ दिन वहां रहे, फिर वहां से उद्धारण दत्त सप्तग्राम वहां आए, कुछ दिन रहे, ऐसे घूमते घूमते संकीर्तन करते हुए। फिर उन्होंने वसुधा के गर्भ में एक पुत्र और एक कन्या की जन्म दिया। पुत्र का नाम है वीरचंद्र प्रभु और कन्या का नाम है गंगा। एक पुत्र और एक कन्या का जन्म दिए। फिर नित्यानंद प्रभु कुछ दिन के बाद सभी का अंतर्धान हो जाएगा। अद्वैत प्रभु, श्रीवास प्रभु, नित्यानंद प्रभु जब अप्रकट हो गए तो उस समय इस संकीर्तन का नेतृत्व कर रहे थे तीन आचार्य, श्यामानंद प्रभु, नरोत्तम प्रभु और श्रीनिवास प्रभु। तो उस समय तीनों आचार्य पूरा संकीर्तन का लीड कर रहे थे। तो एक बार खेतुर में एक बहुत बड़ा उत्सव मनाया, तो उस उत्सव में माँ जाह्नवा को आमंत्रित किए, माँ जाह्नवा उपस्थित रहे, माँ जाह्नवा उपस्थित होकर पूरा खेतुरी उत्सव का उद्यापन किए। फिर खेतुर से माँ जाह्नवा फिर गौरीदास पंडित जहाँ कालना, अंबिका कालना, वहां फिर आए। फिर वहां उस समय गौरीदास का अंतर्धान हो गया, उनका शिष्य था हृदय चैतन्य। हृदय चैतन्य प्रभु ने माँ जाह्नवा का बहुत स्वागत सत्कार किए और माँ जाह्नवा उस दिन एक दो रात रुके और गौर नित्यानंद के लिए बहुत अच्छा प्रसाद भोग रंधन करके गौर निताई को पावाया। फिर माँ जाह्नवा फिर जब नेक्स्ट जब नवद्वीप में आए, नवद्वीप आने के बाद फिर माँ शची का दर्शन नहीं हुआ। फिर माँ जाह्नवा बहुत रोने लगे कि मैं बहुत बड़ा माने उनका जो विरह अनुभव किया। फिर वहां से अद्वैत प्रभु सीता माँ का भी अंतर्धान हो गया था, उनका समाचार सुनकर माँ जाह्नवा का बहुत खेद हुआ, बहुत कष्ट अनुभव किए। फिर माँ जाह्नवा तेलिया बुधरी आए। तेलिया बुधरी रामचंद्र कविराज, गोविंद कविराज के श्रीपाठ है, वहां माँ जाह्नवा एक रात्रि रुके। फिर वहां से फिर खेतुरी ग्राम जाएंगे, राजा संतोष दत्त के घर में बहुत बड़ा उत्सव करेंगे। वहां तीन दिन का उत्सव था। पहला दिन रघुनंदन ठाकुर पूरा व्यवस्था करेंगे, कीर्तन वगैरह सब कुछ करेंगे। द्वितीय दिन श्रीनिवास आचार्य प्रभु छह विग्रह का अभिषेक करेंगे और तीसरा दिन माँ जाह्नवा खुद स्वयं रंधन करके सभी विग्रह को प्रसाद माने भोग अर्पण करेंगे और समस्त वैष्णवों को अपने हाथ से पवाएंगे। फिर माँ जाह्नवा वहां से वृंदावन आने के विचार करेंगे। वृंदावन यहां लिखते हैं पयार में, भक्ति रत्नाकर में, श्री जाह्नवाईश्वरी परम हर्ष होया प्रात काले करिलेन स्नान अन्हे क्रिया परम उत्साह कैलय पूर्व रंधन अन्न व्यंजन आदि जत ना होया वर्णन। माँ जाह्नवा रान्ना में बहुत एक्सपर्ट थे, बहुत प्रकार के व्यंजन प्रिपरेशन भोग रंधन किए। फिर माँ जाह्नवा खेतरी उत्सव समाप्त करके वृंदावन की ओर आने के विचार किए, वृंदावन अभिमुखे यात्रा किए। मार्ग में प्रयाग, काशी होकर मथुरा आए और श्री कृष्ण जी के जन्मभूमि दर्शन किए, केशव देव जी के दर्शन किए। दर्शन करने के पश्चात विश्राम घाट में स्नान आदि किए और माँ जाह्नवा को लेने के लिए वृंदावन से सभी वैष्णव गोस्वामी वृंद गए। हाँ, यहाँ वर्णन कर रहे परमेश्वरी दास सब वैष्णव का, वृंदावन के वैष्णव का परिचय दे रहे माँ जाह्नवा को। क्या यह श्री गोपाल भट्ट गौर प्रेममय, सबका परिचय प्रदान कर रहे परमेश्वरी दास किससे, माँ जाह्नवा से। कौन कौन आए वृंदावन से, यह श्री गोपाल भट्ट गौर प्रेममय भूगर्भ लोक नाथ गुणालय कृष्णदास ब्रह्मचारी ए श्री कृष्ण पंडित श्री मधु पंडित श्री जीव विदित। ঐছে সকলের নাম ক্রিয়া জানাইল, শুনি শরীর মহা আনন্দ বাড়িল। মা জাহ্নব বহুত আনন্দ আয়া কি সবই বৈষ্ণব দর্শন প্রণাম কিয়ে, সবই বৈষ্ণব মা জাহ্নব প্রণাম কিয়ে, আর বৃন্দাবন মে রহনে কি সুন্দর ব্যবস্থা ভি কিয়ে। আর কুছ দিন রহনে কে বাদ মা জাহ্নব ব্রজ কি বিভিন্ন লীলাস্থলী দর্শন করতে গিয়ে বাহার গে, জেসে গোবর্ধন, রাধা কুণ্ড, শ্যাম কুণ্ড, পুরি বৃন্দাবন কি জিতনি লীলাস্থলী হ্যাঁ দর্শন করকে মা মা জাহ্নব বহু দিব্য আনন্দ কে অনুভব কিয়ে। উসকা গ্রন্থকার লিখতে হে কি মা জাহ্নব কা যে দিব্য ভাব উদয় হুয়া উসকা মে বর্ণন নহীঁ কর সকতে, বহুত আনন্দিত হুয়ে। ফির মা জাহ্নব ইহা সে বৃন্দাবন সে ফির চলে যায়েঙ্গে গৌর দেশ, গৌর দেশ সে গৌর দেশ গৌর মন্ডল মে যাকর ফির যায়েঙ্গে খেতুরি, খেতুরি সে খেতুরি ভি উস সময় নরোত্তম দাস ঠাকুর থে, সব মা জাহ্নব কা স্বাগত কিয়ে। ফির উহা সে একা চক্র আয়েঙ্গে, মা জাহ্নব একা চক্র মে আয়েঙ্গে। একা চক্র মে উস সময় ভগ্না পুরা ঘর টুটা হুয়া থা, আর শ্রী হড়াই পণ্ডিত পদ্মাবতী দেবী কা অন্তর্ধান হো চুকা থা। এই সংবাদ শুনকর উনকা বহুত খেদ হুয়া, দুঃখ হুয়া, আর নিত্যানন্দ প্রভু কা জন্মস্থলী কা বিভিন্ন লীলাও কা এক ব্রাহ্মণে দর্শন করায়া মা জাহ্নব কো। মা জাহ্নব এই সব লীলাস্থলী উহা এক রাত্রি রুকে সংকীর্তন কে সাথ, এক রাত রুক কর ফির উহা সে ফির উহা সে যদ এক পয়ার মে লিখতে, যদ্যপি ভবন শূন্য ভগ্ন অতিশয় তথাপি কারণা চিত্তয়াকর্ষয়, নিত্যানন্দ লীলাস্থলী করিয়া দর্শন হইলা প্রেমাবৃষ্টি যত যাইছে না হইয়া বর্ণন, সে দিবস ভগ্ন ভবনেতে বাস কইলা। মা জাহ্নব যো মানে সবসে পহলে কহা এক রাত্রি রুকে উহা কীর্তন কিয়ে আর উহা কা আনন্দ লিয়ে, নাম কীর্তন সে পুরা রাত্রা রাত্রি যাপন কিয়ে। ফির একা চক্র মে রহনে কে বাদ ফির মা জাহ্নব কাটোয়া মে যায়েঙ্গে, কাটোয়া মে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু সন্ন্যাস লীলা দর্শন করকে, যাহা সন্ন্যাস লীলা কিয়ে থে মহাপ্রভু নে ও দেখ মা জাহ্নব নে বহুত রোদন কিয়ে মহাপ্রভুর লীলা কা দর্শন করকে। ফির মহাপ্রভু কে দর্শন কে বাদ কাটোয়া দর্শন কে বাদ শ্রীনিবাস কে ঘর যায়েঙ্গে, শ্রীনিবাস কে দুই পত্নী মা জাহ্নব কি খুব সেবা করেঙ্গে। ফির নবদ্বীপ মে আয়েঙ্গে, নবদ্বীপ উস সময় নবদ্বীপ ঘর মে মহাপ্রভু ঘর মে বৃদ্ধ ঈশান রহ রহে থে, বৃদ্ধ ঈশান মা জাহ্নব কি খুব সৎকার করেঙ্গে, আর সৎকার কে পশ্চাৎ মহাপ্রভুর ভবন দেখ মা জাহ্নব প্রেম সে মূর্ছিত হয়ে যায়েঙ্গে। ফির মা জাহ্নব ফির সবই ভক্তকে বীচ মে গৌর মন্ডল কি যে যাহা যা ভ্রমণ কিয়ে, যা ব্রজ মন্ডল মে যাহা যা ভ্রমণ কিয়ে উসকি সবই সারি কথায় সবই ভক্ত কো সে শেয়ার কিয়ে কি মানে যাহা যাহা গে ও সব স্থলীয় কা লীলা শুনায়ে। ফির মা জাহ্নব নে ফির মা জাহ্নব এই সব করতে করতে কহা গিয়া কি বৈষ্ণব সমাজ কে মুকুটমণি হ্যাঁ, শ্রী নিত্যানন্দ কে স্বরূপিনী হ্যাঁ, ইস প্রকার সে মা জাহ্নব কো আদর দিয়ে। ফির ভক্তি বিনোদ ঠাকুর বড় এক সুন্দর পদ লিখতে, ভক্তি বিনোদ ঠাকুর মা জাহ্নব কে বারে মে বহু সুন্দর পদ লিখে, আজকে দিন মে ইসকো শ্রবণ করনা হি চাইয়ে, কিউকি উনোনে হৃদয় খোল কে বোলা কি মেরে মেরি স্থিতি ক্যা হ্যায়, আগর ইস স্থিতি সে আপ কৃপা নহীঁ করেঙ্গে তো ইস স্থিতি সে মে আগে নহীঁ বাড় পায়েঙ্গে। ভক্তি বিনোদ ঠাকুর যে সপ্তম গোস্বামী কহা যাতা হ্যায় উনোনে ইস প্রকার কি প্রার্থনা কর রহে হ্যায়, ভবার নবে পড়ে মানে সংসার সাগর মে গির চুকা হুঁ, মুঝে উদ্ধার কিজে হে মা জাহ্নব। ভবার নবে পড়ে মোর আকুল পরাণ, কিসে কুল পাব তার কিসে কুল পাব তার না পাই সন্ধান, কেসে ইসে উদ্ধার হোঙ্গে মুঝে কুছ পতা নে, না আছে কর্ম বল নাহি জ্ঞান বল, যোগ জাগ জাগ যোগ তপ ধর্ম না আছে সম্বল, কিছু প্রকার কি আমার শক্তি নেই না কর্ম না জ্ঞান না তপ না যোগ না কিছু প্রকার কি সাধন কি ক্ষমতা নেই, নিতান্ত দুর্বল আমি ना जाने सतार, मैं बहुत अतना दुर्बल हूँ, भक्ति में बहुत कच्चा हो, मैं सातार इस संसार समुद्र में गिर चुका हूँ, मुझे स्विमिंग आता नहीं, मुझे मैं सातार मैं तैरना नहीं जानते। ए विपदे के हमारे करीबे उद्धार, विषय कुंभ इस संसार दृश्य का वर्णन करे, सभी लोग इसी फंसे हुए है। विषय कुंभीर ताहे भीषण दर्शन, कामेर तरंग सदा करे उत्तेजन। इन फैक्ट सब उठा दिया यहाँ, किस प्रकार से काम जातना सब झलस रहे, किस प्रकार से संसार में विषय की कुंभीर है, जो मगरमच्छ है, ये सब बड़े बड़े सबको डस रहे हैं। ये भीषण दर्शन सांसारिक स्थिति का वर्णन कर रहे हैं भक्त विनोद ठाकुर। ये काम की पीड़ा से सब जल रहे हैं। प्राक्तन वायुर बेग सहित ना पारी, कांदी आय स्थिर मन ना देखी कांडारी। मैं किसी प्रकार कोई सहारा नहीं देख रहे, कोई जो इतनी बड़ा भयानक स्थिति है इसमें कोई सहाय करने वाला कोई नहीं है। कांदिया ओ स्थिर मन ना देखी कांडारी, ओ गो श्री जानवा देवी ए दास करुणा, हे माँ जानवा इस दास पर करुणा करे। ओ गो श्री जानवा देवी ए दास करुणा, करो आज निज गुणे घुचाऊ यंत्रणा। अपनी कृपा करके इस दास को इस यंत्रणा से मुक्त कीजिए, मैं जो यंत्रणा से जल रहे हैं ये यंत्रणा से मुझे उद्धार कीजिए। तुम्हारे चरण तरी करिया आश्रय, भवार नव पार हव करे निश्चय। माँ जानवा के चरण आश्रय करके मैं ये भवार नव जो संसार सागर है इससे मैं तर जाऊंगा। तुम्हें नित्यानंद शक्ति कृष्ण भक्ति गुरु, तुम्हें नित्यानंद शक्ति कृष्ण भक्तिर गुरु, ए दास करो दान पद कल्प तरु, इस दास पर आप करुणा करें। कत कत पामरेर करे उद्धार, तुम्हारे चरणे आज एकांगाल छार, तुम्हारे चरणे आज एकांगाल छार। आज आपके चरण में एक कांगाल, ए दयनीय अवस्था, इस भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे कि हमें बहुत दुखी हो, इस दुखी को आप उद्धार कीजिए। आपने बहुत बहुत पापी के उद्धार किए, इस प्रकार के भक्त विनोद ठाकुर आपने करुण शब्दों में, ये बहुत कारुणिक कविता है अगर इसको विचार किया जाए, माने रोते हुए भक्त विनोद ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना जो है ये रोने का है। तो भक्त विनोद ठाकुर पद कल्प कल्याण कल्प तरु में इस प्रकार की वंदना प्रार्थना माँ जानवा से कर रहे हैं। तो आज विशेष करके आज माँ जानवा से यही प्रार्थना की, आपके श्री चरण में आश्रय प्रदान करें और हम सब संसार समुद्र में जल रहे हैं इस संसार से हम सबको उद्धार करें। आज जो है आज श्री मधु पंडित गोसाई, मधु पंडित की तिरुभाव दिवस भी है। मधु पंडित गदाधर पंडित के शिष्य थे। किसके शिष्य? गदाधर पंडित के शिष्य। मधु पंडित नवद्वीप में बास करते थे और वहां गुरु मुख से और सभी वैष्णवों के मुख से वृंदावन की महिमा श्रवण करते थे, कृष्ण की महिमा। खूब निरंतर उनके श्रवण की बहुत लालसा कि मुझे कोई कृष्ण कथा सुना दे, कृष्ण के माधुर्य का श्रवण करा दे, ऐसे ही श्रवण की लालसा होनी चाहिए। तब जाकर जब हृदय में जो विषय रस खेल रहे, विषय का जो तूफान बह रहे हैं, इससे जीव मुक्त हो पाएंगे। अन्यथा विषय से जंजाल से मुक्त होना भारी कठिन है। तो इस प्रकार के जब कथा श्रवण किए गुरु मुख से वैष्णव के मुख से, श्रवण के पश्चात उन्होंने विचार किया मुझे वृंदावन जाना है, क्योंकि वहां लिखा है वृंदावनम परित्यज्य पादम एकम न गच्छति। भगवान कृष्ण वृंदावन से एक कदम भी बाहर नहीं जाते, हमेशा वृंदावन में रहते, उनका ये विश्वास हो गया। तो उन्होंने सोचा कि मुझे वृंदावन आना है। तो वृंदावन आने के लिए कुछ सहारा नहीं, कोई खान पान की व्यवस्था नहीं, इस समय तो बहुत खान पान साथ में चलता है, हाँ ना जाने कितनी व्यवस्था साथ में होती है। तो उन्होंने दो चीज लिया, एक कृष्ण स्मृति और एक प्रेमाश्रु। एक निरंतर कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं कि मुझे कब वृंदावन जाना है, कब पहुंचेंगे, और एक आंखों में आंसू की धारा चल रहे हैं, ये दो उनकी फाथे हैं। तो जब उन्होंने वृंदावन पहुंचे, और उनका भागवत में विशेष प्रेम भी था, क्योंकि गदाधर पंडित विशेष भागवत में रुचि रखते थे, उनको भागवत स्वरूप ही माना जाते थे। एक बार श्रीनिवास आचार्य प्रभु गदाधर पंडित, क्योंकि उन महापुरुष स्वयं श्रवण करते थे, गदाधर के मुख से महापुरुष स्वयं श्रवण करते थे, और एक दिन उनका आंखों के आंसू से भागवत के अक्षर जो है मिट गया था। एक बार श्रीनिवास आचार्य प्रभु उनके घर पर गए, और घर पर उनके भागवत प्रेम देखकर उनका मूर्छा गए, मूर्छा 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 चले गए। तो उस समय गदाधर पंडित अति वात्सल्यता से उनको उस अवस्था से बाहर ले आए। फिर मैंने विशेष भागवत साक्षात श्री कृष्ण उन्होंने प्रमाण किए। फिर जब मधु पंडित वृंदावन आ गए, वृंदावन आने के बाद वन मन में खोज रहे कहाँ, ब्रजवासियों से पूछ रहे ब्रज बिहारी की पता कहाँ है, ब्रज बिहारी कहाँ रहते हैं। वो सोचते ये शायद जानते होंगे, ये शायद जानते होंगे, ये शायद जानते होंगे, सबसे पूछ रहे हैं। भूखे प्यास कोई होश नहीं, कोई भूख प्यास है कोई भान नहीं, कोई कष्ट नहीं, शुद्ध एकमात्र पिपासा कैसे भगवान श्याम सुंदर का दर्शन हो। इस दिन रात कुंज कुंज में, गोलियों में, अटखेलियों में, सब जगह ढूंढ रहे हैं, आज शायद शायद प्रभु को दर्शन हो जाएगा। पूरा आंधी चल रहा है, पूरा तूफान चल रहे, जमुना में बाढ़ बह रहे हैं, फिर उसी में किनारे कागार में बैठकर श्याम सुंदर, हा श्याम सुंदर, हा कमल लोचन, हा प्राणधान, इस प्रकार से रोदन करते हुए पूरे समय को रात दिन यही चिंता कि कब मुझे श्याम सुंदर का दर्शन हो। तो एक दिन देखे बहुत बारिश हो रहा है, बहुत मतलब समय संध्या होने वाला है, जमुना में बहुत बाढ़ है, आंखों के आंसू से जमुना में बाढ़ आ गया, इतना आंसू आंसू बहाते थे। तो देखे कि पीछे से एक सुंदर बांसुरी, और हमें से याद करते शायद एक कृष्ण की बांसुरी है, एक कृष्ण के ध्वनि है, कृष्ण मुझे बुला रहे हैं। तो एक दिन हठात देखे कि कृष्ण जी साक्षात श्याम सुंदर बांसुरी बजाकर बुला रहे, और जैसे बुलाया उन्होंने जाकर आलिंगन किया श्याम सुंदर बंसी भट्ट में, बंसी भट्ट के बंसी भट्ट तटस्थित कर्षण वेणु सनेर गोपी गोपीर नाथ श्रीअस्तु नः। तो बंसी भट्ट में स्थित थे गोपीनाथ, तो वहां बांसुरी की आवाज जैसे सुने वहां जाकर प्रभु का आलिंगन किए। तो गोपीनाथ कहे कि आपका तो दर्शन हो गया, मुझे जाने दीजिए। कि प्रभु ने हाय आप हमारे साथ रहिए, नहीं तो मुझे आपके साथ ले चलिए, मैं ये जीवन आपके बिना नहीं रख सकते। तो कहे कि देखिए एक कलिकाल है, इस समय तो मैं नहीं रह पाएंगे, आप विग्रह रूप में आपके साथ निरंतर रहेंगे, विग्रह के रूप में आपके साथ सदा ही रहेंगे। तो विग्रह को लेकर आए ठाकुर जी, अभिषेक किए, अभिषेक के पश्चात निरंतर उनका निरंतर नाम रूप रस लीला का कीर्तन चलता रहा। इस प्रकार से अवर गोपीनाथ की जब स्थापना किए, माँ जाह्नवा ने खेतुरी से एक विग्रह भेजे, वो जाह्नवा का ही स्वरूपा, और कहे कि एक ब्राह्मण से कि ये गोपीनाथ के माया भाग में रखना। तो पुजारी का आकर कहे कि माँ जाह्नवा ने ऐसे ही कहा कि बाया हाथ में रखने के लिए। तो पुजारी ने कहा कि ये कैसे संभव है, तो राधारानी का स्थान है बाया हाथ, बाया जो स्थान है राधारानी का स्थान है, रख नहीं सकते। फिर सपना देश हुआ कि नहीं रख सकते।
तो फिर बाया हाथ में जैसे रखे तो राधा रानी रुट गए, राधा रानी माँ ने बहुत मान करने लगे। फिर कुछ दिन के पश्चात माँ राधा रानी कहे कि नहीं, जो किया ठीक किया जानना बाब गोपीनाथ, क्योंकि मेरी बहन है अनंग मंजरी है, जो जानना बा है ये अनंग मंजरी है, तो श्री राधा की बहन है तो वो वही रहेगी और मेरा स्थान डायना तरफ होगा। आज भी गोपीनाथ मंदिर में डायना तरफ राधा जी है, बाया तरफ माँ जाह्नवा का स्थान है। तो गोपीनाथ जी की साक्षात सेवा मधु पंडित गोस्वामी ने किया। एक्चुअली आचार्य की वैष्णव की वंदना श्रवण करने से उनकी जी भक्ति का छोटा भाग मुझे प्राप्त हो जाएगा। किसी दुष्चरित्र व्यक्ति का चरित्र श्रवण करेंगे उसका पाप का छोटा भाग मुझे मिल जाएगा। तो इसलिए किसी पापी व्यक्ति का किसी दुष्चरित्र का श्रवण कभी ना करें। श्रवण करना है तो भक्तमान में बहुत भक्त का चरित्र है। अब भगवान भक्त का चरित्र सुनने बहुत तरसते हैं, कब मुझे कोई भक्त का चरित्र सुना दे। जैसे अपने घर में ठाकुर जी हैं, आज इस एक भक्त का मुझे चरित्र सुनाना है ठाकुर जी को। आपने देखना ठाकुर जी साक्षात अपना खिलने लगेगा, हंसने लगेगा, उनका चेहरे में मुस्कान आ जाएगा कि मैंने आज अपना भक्तों का एक चरित्र श्रवण किया। तो इसी प्रकार भक्त का चरित्र निरंतर रोज छोटा जितना है हो, एक प्यार हो दो प्यार हो, जितना अंश पढ़ेंगे उतना ही ठाकुर जी की प्रसन्नता मिलेगी। तो फिर आज एक और है माँ रामचंद्र की, जो सहधर्मिनी माँ सीता की आज आविर्भाव दिवस है नवमी। मैं कुछ अंशों को सुनाता हूँ, आप लोग एक मंत्र बोलिए सीता माँ के प्रणाम मंत्र। उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी सर्वश्रेय करी नतो अहम राम वल्लभम। उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी सर्वश्रेय करी नतो अहम राम वल्लभम। मैं राम वल्लभा माँ सीताजी को श्री चरण में प्रणाम निवेदन करते, जो उद्भव स्थिति और संहार करती है। उद्भव मतलब सृष्टि स्थिति प्रलय करती है, क्लेश का निवारण करती है और सर्वश्रेय को प्रदान करने वाली है, ऐसे माँ सीता को हम प्रणाम निवेदन करते हैं। तो समय बहुत कम है, माँ सीता की भूमिपुत्र कहा जाता है, भूमिपुत्री पृथ्वी की कन्या। तो सीता का आर्य नाम वैदेही, सीता का आर्य नाम वैदेही, जनक दंदिनी राम वल्लभा सीता। सीता जहां यज्ञ किए थे तो यज्ञ का स्थान का समतल करने के लिए उन्होंने हाल कर्षण किया था, तो हाल का जो सामने भाग है उसको सीत कहते हैं। तो सीत से जैसे प्राप्त किए इसलिए माँ सीता का नाम पड़ गया सीता। तो माँ सीता के बहुत सुंदर चरित्र आप लोग श्रवण करेंगे, राम सीता संवाद एक प्रकरण है। तो वह प्रकरण में जैसे भगवान श्री राम कहेंगे, हे सीते वन में जाना ठीक नहीं है, वन बहुत दुर्गम है, वहाँ कोई व्यवस्था ठीक नहीं है, आप राजकुमारी है, आप घर पर रहकर ही पिता माता सबकी सेवा करें, बहुत परीक्षा लेंगे माँ सीता के, किंतु माँ सीता आखिर तक नहीं मानेंगी और प्रभु श्री राम के साथ चलने के लिए तैयार होंगे। तो उसका तो प्यार आप लोग श्रवण करेंगे, पढ़ेंगे घर पे जाकर माँ राम सीता जी की संवाद। मैं एक दो प्यार सुनाता हूँ। माता के सामने सीता जी से कुछ कहने में संकोच आते हैं, पर मन में यह समझकर कि यह समय ऐसा ही है, ये बोले, हे राजकुमारी मेरी सिखावन सुनो, मन में कुछ दूसरी तरह ना समझ लेना। भगवान श्री राम कहे, मैं जिन्हें जो कुछ कहा कह रहे हैं उसको सुनो, दूसरा कुछ मत समझो, जो अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरा वचन मानकर घर पे रहो। हे भामिनी, मेरी आज्ञा का पालन होगा, सास की सेवा बन पड़ेगी, घर रहने में सभी प्रकार से भलाई है। आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों की पूजा करने से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। जब जब माता मुझे याद करेगी और प्रेम से बेकुल होने के कारण उनकी बुद्धि भोली हो जाएगी, ये अपने आप को भूल जाएगी। हे सुंदरी, तब तब तुम कोमल वाणी से पुरानी कथाएं कहकर इन्हें समझाना। हे सुमुखी, मुझे सैकड़ों सौगंध है, मैं यह स्वभाव से ही कहता हूँ कि मैं तुम्हें केवल माता के लिए ही घर पर रखता हूँ। मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से गुरु और वेद की द्वारा समस्त धर्म के आचरण का फल तुम्हें बिना ही क्लेश के मिल जाएगा। किंतु हट के वश होकर गालब मुनि और राजा नहुस आदि सबने संकट ही सहे। हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो, मैं भी पिता के वचन को सिद्ध करके शीघ्र ही लौटूंगा, दिन जाते देर नहीं लगेगी। हे सुंदरी, हमारी यह सीख सुनो। हे बामा, यदि प्रेम बस हट करोगी तो तुम परिणाम में दुख पाओगी। वन बड़ा कठिन, क्लेशदायक और भयानक है। वहां की धूप, जाड़ा, वर्षा और हवा सभी बड़े भयानक है। रास्ते में कूस, कांटे, बहुत से कंकड़ है, उन पर बिना जूते के पैदल ही चलना होगा। तुम्हारे चरण कमल कोमल और सुंदर है और रास्ते में बड़े बड़े दुर्गम पर्वत है। पर्वतों की गुफाएं, खोए दरे, नदियां, नद और नाले ऐसे अगम्य और गहरे है कि उनकी ओर देखा तक नहीं जाता। रीछ, बाघ, भेड़िए, सिंह और हाथी ऐसे भयानक शब्द करते हैं कि उन्हें सुनकर धीरज भाग जाता है। जमीन पर सोना, पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनना और कंदमूल फल का भोजन करना होगा, और ये भी क्या सदा सब दिन मिलेंगे? सब कुछ अपने अपने समय के अनुकूल ही मिल सकेगा। मनुष्य को खाने वाले निशाचर राक्षस फिरते रहते हैं, एक करोड़ों प्रकार के कपट रूप धारण कर लेते हैं। पहाड़ का पानी बहुत ही लगता है, वन की विपत्ति बखाने नहीं जा सकती। वन में भीषण सर्प, भयानक पक्षी और स्त्री पुरुषों को चुराने वाले राक्षसों के झुंड रहते हैं। वन की भयंकरता याद आने मात्र से धीर पुरुष भी डर जाते हैं। आ फिर हे मृगलोचनी, तुम तो स्वभाव से ही डरपोक हो। हे हंस गमनी, तुम वन के योग्य नहीं हो। तुम्हारे वन जाने की बात सुनकर लोग मुझे अपजस देंगे, बुरा कहेंगे। मान सरोवर के अमृत के समान जल से पाली हुई हंसिनी कहीं खारे समुद्र में जा सकती है? नवीन, आपके वन में विहार करने वाली कोयल क्या करिल के जंगल में शोभा पाती है? हे चंद्रमुखी, हृदय में ऐसा विचार कर तुम धरती पर घर ही पर रहो, वन में बड़ा कष्ट है। स्वाभाविक ही हित चाहने वाले गुरु और स्वामी की सिख को जो सिर चढ़ाकर नहीं मानता, वो हृदय में भरपेट पछताता है और उसके हित की हानि अवश्य होती है। प्रियतम के कोमल तथा मनोहर वचन सुनकर सीता जी के सुंदर नेत्र जल से भर गए। श्री राम जी के यह शीतल सिख उनकी कैसी जलने वाली हुई, जैसे चकबी को शरद ऋतु की चांदनी रात होती है। जानकी जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता, यह सोचकर बेकुल हो उठी कि मेरे पवित्र और प्रेमी स्वामी मुझे छोड़ जाना चाहते हैं। नेत्रों के जल को जबरदस्ती रोक कर पृथ्वी की कन्या सीता जी हृदय में धीरज धरकर सास के पैर लगकर हाथ जोड़कर कहने लगी, हे देवी, मेरी इस बड़ी भारी ठिठाई को क्षमा कीजिए। मुझे प्राणपोती ने वही शिक्षा दी है जिससे मेरा परम हित हो। मैंने कहने का उद्देश्य है, माँ सीता ही कहेंगे कि ये जो संबंध है आपके आपके संबंध से है, अगर आप नहीं है तो इस संबंध का कोई मतलब ही नहीं है। तो मुझे आपके बिना मैं जी नहीं सकती हो, आपके बिना मैं रह नहीं सकती हो, आपके साथ ही मुझे जानना है। तो भगवान श्री राम अपने अर्धांगिनी माँ सीता को साथ में ले चलेंगे और आगे चलकर बहुत सारी कथाएं हैं, करुण दृश्य है। तो हम सब श्रवण करेंगे श्रील प्रभुपाद की, श्रील वृंदावन धाम की, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।